ओम शांति। हम सभी मीठे बाप दादा के ब्राह्मण बच्चे हैं ना। हम सभी को दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला है, किंतु बाबा ने आज सुबह भी मुरली में इशारा किया कि ब्राह्मण जन्म में जो हम बच्चे बाबा के बच्चे बने उनकी भी अलग अलग गुह्य गति है ना। एक तो जो समर्पित बच्चे हैं उनकी अलग है, जो यहाँ समर्पित हैं बाबा के घर में सेंटर्स पर समर्पित हैं उनके भी जीवन की गुह्य गति है, और जो घर परिवार में रहते हैं और फिर ट्रस्टी बनकर के अपने कार्य व्यवहार को चलाते हैं उनको भी पूरा पूरा चांस है ना 108 की माला में आने का, राज्य भाग्य प्राप्त करने का। तो आज उसकी गहराई में चलते हैं। चलिए, दिव्य ब्राह्मण जन्म की गुह्य गति। हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म तो मिला है शिव बाबा ने। अब हम सब आत्माओं, हम आत्माएं तो यही कहेंगे क्योंकि हमारा जन्म 69 के बाद हुआ है, तो हम सब आत्माएं क्या कहेंगे कि प्राण व्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें शिव बाबा ने दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया। और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही पहली गिफ्ट बाबा कौन से देते हैं बताइए। दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा अपने बच्चों को कौन सी गिफ्ट देते हैं? बर्थडे गिफ्ट कौन से देते हैं बोलिए। हाँ जी, उससे भी पहले क्या देते हैं? उससे पहले रूहानी दृष्टि देते हैं ना, रूहानी दृष्टि के सबको, अपने आप को स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा महसूस करो, सच्चे दिल से महसूस करो, रियलाइज करो, रियलाइज है ना, रियलाइज में ना सच्चे दिल से महसूस करना, अपने अंदर से महसूस करो मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा यहां बैठ करके सारे शरीर को, शरीर की जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, सॉरी आत्मा के सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, बुद्धि मन और संस्कार, और शरीर की पांचों कर्मेंद्रियां, और शरीर के आठों अंगों की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रहे हैं। मैं आत्मा चला रही हूं, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा यह अटेंशन रहे, ये महसूस होता रहे कि मैं आत्मा यहां बैठ के क्या कर रही हूं, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से। आत्मा के पास क्या है? सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं। कौन कौन सी? ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और आठों शक्तियां। नेमली कौन कौन सी आठ शक्तियां याद है किसी को? सीक्वेंस वाइज कौन सी आठ शक्तियां? पहली शक्ति सत्य को परखने की शक्ति, सबसे पहली शक्ति है सत्य को, जिसे हम इंग्लिश में विजडम भी कहते हैं, हिंदी में विवेक भी कहते हैं, और आम भाषा में तीसरी आंख भी कहते हैं, ज्ञान की तीसरी आंख, तीसरा नेत्र भी कहते हैं, सत्य को परखने की शक्ति, विवेक, विजडम। दूसरी शक्ति है यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, जिसको आम भाषा में हम दिव्य बुद्धि भी कह देते हैं, एक्यूरेट यथार्थ निर्णय, एक सेकंड में परखा और निर्णय किया। ये दो शक्तियां ब्राह्मण जीवन के लिए अति विशेष है। तीसरी शक्ति कौन सी है? विस्तार को सार में लाने की शक्ति, विस्तार। हमारी मन और बुद्धि कहां फैला हुआ है? आत्मा का मन और बुद्धि कहां फैला रहता है? देह और देह के दुनिया के विस्तार में फैला हुआ है ना? इस विस्तार से मन बुद्धि को समेट के ये जब इसके पास सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, तो देह और देह के दुनिया का विस्तार क्या सत्य है क्या असत्य है? असत्य है। असत्य से देह और देह के दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट सत्य है। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूं, एक अशरीरी आत्मा बन के, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा बन के। और सूक्ष्म शरीर क्या चीज है? सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। बुद्धि यहां है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है। मन के चार एस्पेक्ट होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? मन के चार एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज. संकल्प, थॉट्स माना संकल्प, इमोशंस माना भावनाएं और एटीट्यूड्स माना वृत्ति, और चौथा है मेमोरीज अर्थात स्मृति. तो संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, ये मन में चार बातें होती हैं. ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज. तो ये संकल्प हमारा शरीर के एक एक सेल में मन फैला हुआ है पूरा. कहीं भी कुछ थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना, एक छोटी फुंसी भी निकल आए, कहीं पे कुछ दाग भी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, क्या होता है, उसी के बारे में विचार चलता है, उसी के बारे में भावना चलती है, आपकी वृत्ति बदल जाती है. आप अभी ठीक ठाक हो, अचानक कोई डॉक्टर, आप ECG कराओ, डॉक्टर कहे आपका हाफ हार्ट पेशेंट हो, आपकी हार्ट की आर्टरीज, आपको हार्ट अटैक आगे गया हुआ है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, तो क्या होगा, आपकी वृत्ति बदल जाएगी, है ना, चाल ही बदल जाएगी, चेहरा ही बदल जाएगा, नहीं होता, दृष्टि बदल जाएगी, नहीं होता. तो और फिर स्मृति, स्मृति है ना, ये चार चीजें जो है आत्मा की, ये मन की, ये मन के चार एस्पेक्ट है सारे शरीर में. यही स्मृति रहेगी, मैं ये हूं, मैं हार्ट पेशेंट हूं, मेरे को तो डायबिटीज है, मेरे को तो ब्लड प्रेशर है, मेरी तो टांग खराब है, मेरी तो रीढ़ की हड्डी की मणका खिसका हुआ है ना, क्या होता है, तो थोड़ा सा भी कुछ होता है, क्या होता है, तो मन जो है सारे शरीर में फैला हुआ है. और बुद्धि, दिव्य बुद्धि, ये जो आपने बताया थोड़ी देर पहले, दिव्य बुद्धि, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विवेक, सत्य को परखने की शक्ति, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया तो निर्णय शक्ति जागृत हो गई, दिव्य बुद्धि बन, दिव्य बुद्धि, और दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, किसका, मन का, सूक्ष्म शरीर का इंजन कौन सा है, दिव्य बुद्धि. और फिर संस्कार, संस्कार माना कौन से संस्कार, हम ब्राह्मण कौन से संस्कार हैं, हम ब्राह्मणों के संस्कार हैं, पहला जो चार धारणाएं हैं ना हमारी, चार मर्यादाएं हैं और चार नियम हैं, या चार चार कहें परहेज हैं और चार गोलियां हैं, मेडिकल भाषा में कहें तो चार परहेज कौन से हैं हमारे, पहला पवित्रता, ये हमारी धारणा है, ये हमारा संस्कार है. ब्राह्मणों का संस्कार क्या, ये पवित्रता, मतलब पवित्रता हमारा ऐसा संस्कार, ऐसी हमारा जो, मतलब खाली पवित्रता, खाली ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचारी, ब्रह्मचारी नहीं खाली, ब्रह्म रोज जब सुन रहे हैं अव्यक्ति इशारा, खाली ब्रह्मचारी नहीं, क्या ब्रह्माचारी, माना निराकारी, मैं निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइंड रहूं, मतलब मस्तक में अपने बाबा को, शिव बाबा को समा दो, और नैनों में ब्रह्मा बाबा को समा दो. मस्तक में किसको समा दो, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने मस्तक में, नैनों में, मुख में किसको समा दिया, शिव बाबा को समा दिया, और वो क्या बन गए, व्यक्त ब्रह्मा से अव्यक्त ब्रह्मा बन गए, ब्राह्मण से फरिश्ता बन गए. अब हमको क्या करना है, शिव बाबा को यहां कंबाइंड रखना है, आत्मा शिव बाबा से कंबाइंड रहे, और नैनों में ब्रह्मा बाबा को समा दो. सामने हमारे सामने एग्जाम्पल है, सैंपल है, उसको देखते रहो हर चीज में, चाहे सोच रहे हो तो भी देख, कैसे ब्रह्मा बाबा कैसे सोचते थे, देख रहे हो तो ब्रह्मा बाबा कैसे देखते थे, पढ़ रहे हो तो ब्रह्मा बाबा कैसे पढ़ते थे, सुन रहे हो तो किसी की बात तो ब्रह्मा बाबा कैसे सुनते थे, है ना, और बोल रहे हो तो ब्रह्मा बाबा कैसे बोलते थे, ब्रह्मा बाबा कैसे खाते थे, ब्रह्मा बाबा कैसे चलते थे, ब्रह्मा बाबा संबंध संपर्क में कैसे आते थे, है ना, बच्चों के साथ कैसे आते थे, जवानों के साथ कैसे आते थे, युवाओं के साथ कैसे, और बूढ़े लोगों के साथ कैसे आते थे, जैसा जैसी उम्र के आते थे मिलने बाबा, उनके साथ बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, युवाओं के साथ युवा बन जाते थे, और बूढ़ों के साथ हम जिन्स थे उनके साथ उनके वैसे बन जाते थे ने? तो ये जो है हमारी धारणा, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, ये पक्की धारणा हमारी, ये मतलब हमारी पक्की जो मर्यादा है ना, ब्राह्मण जिनको श्वास क्या है, पवित्रता. अगर हम पवित्र नहीं है तो हम ब्राह्मण नहीं है, राइट. ब्रह्मचारी, और जितना परसेंट में हम ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी बनते जाए, हमारी परसेंटेज बढ़ती जाती है, उतना ही हम क्या बनते जाते, सच्चे ब्राह्मण बनते जाते. नहीं तो हम सच्चे ब्राह्मण नहीं है. अगर खाली नाम मात्र, नाम के हम सिर्फ, हमने बैच लगा लिया, सफेद ड्रेस पहन ली, तो हम ब्राह्मण बन गए क्या? नहीं, हमारा हर कर्म ब्रह्मा बाबा के समान होना चाहिए और हर समय चलते फिरते उठते बैठते हम क्या हो, निरंतर शिव बाबा से परमधाम में कंबाइंड रहे। मैं अशरीर आत्मा परमधाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड हो, क्योंकि ब्रह्माचारी बनना कोई सहज काम है क्या? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना सहज काम है? यस नहीं, सहज नहीं है। जो आत्मा निराकारी बनके निराकारी बाप से निरंतर कंबाइंड रहती है वही ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकती है। नहीं तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, हर चीज को टैली करना, हर चीज को मिलाना कि बाबा ने ये किया, अपने पास इतना समय हो, इतनी पेशेंस हो कि कोई भी काम करने से पहले, सोचने से भी पहले, देखने से, मैं आपको देख रहा हूं, देखने से भी पहले है ना, सुनने से भी पहले, बोलने से भी पहले, खाने से भी पहले, पहले क्या करो, ब्रह्मा बाबा को इमर्ज करो कि ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे, मैं कैसे करूं। नहीं तो बाबा से पूछो, बाबा कैसे करूं, वेरीफाई करो, अगर ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे मैं भी ऐसे करूं, ब्रह्मा बाबा ये खाते थे सुबह नाश्ते में मैं भी ये खा लूं, ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे हर चीज। कोई नया तो करना ही नहीं है, फोटोकॉपी बनना है ना, क्या बनना है हमें, ब्राह्मण बना क्या, ब्रह्मा बाबा की फोटोकॉपी, राइट। अगर उसके परिवार में आना है, पहले जन्म में आना है, जिनको पहले जन्म में आना है ब्रह्मा बाबा के साथ श्री कृष्ण हाथ उठाओ, जिनको पहले जन्म में आना है ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा, जिनको दूसरे जन्म में आना है हाथ उठाओ। कोई ऐसा जैसे दूसरे जन्म में आना हो कि श्री कृष्ण के साथ क्या करेंगे, सेकंड जन्म में आएंगे, अर्जुन ऐसा कोई है क्या? कोई नहीं ना। तो अभी जब ब्राह्मण बनना है तो सच्चा ब्राह्मण, मुझे याद है बड़ी दादी कहा करती थी, जब मैं पहली बार 95 में जब यहां पर आया, जब रहने के लिए आया, उससे पहले तो मैं हर साल में 5-6 बार, 3-4 बार तो आता ही था, कभी कभी 5-6 बार भी आता था हर साल में। कि तो तब दादी ने आते ही मुझे कहा कि गुप्ता जी यहां पर ना 100 ब्राह्मण है, 100 बीके हैं, कि तो उसमें से 5 ही ब्राह्मण है, इसलिए क्या करना, कौन ब्राह्मण है कौन बीके है ये पता नहीं लगेगा, आप सिर्फ किसको देखना, किसको देखना, शिव बाबा से कंबाइंड रहना और ब्रह्मा बाबा को देखना, ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखना, ब्रह्मा बाबा के जीवन को कॉपी करना, फॉलो करना, यहां किसी को भी मत देखना। क्यों, बीके और ब्राह्मण में क्या फर्क होता है बताओ, बीके और ब्राह्मण में कोई फर्क है क्या? ये फर्क है बीके और ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है सदा ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द में बहुत छिपा हुआ है, ब्राह्मण माना ब्रह्म माना बेहद, जैसे ब्रह्मा शब्द है ना, अभी 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा बरसात है ना जोर से, आवाज आ रही है, आवाज पहुंच रही है, ठीक है ओके। तो ब्राह्मण जैसे ब्रह्मा शब्द का क्या है, ब्राह्मणा बेहद और बेहद की बां, शिव बाबा बेहद का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा सभी मनुष्यों मनुष्य आत्माओं की मां है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात हिंदू धर्म के हों, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, चाहे वो सिख धर्म के हों, क्रिश्चियन धर्म के हों, बुद्ध धर्म के, कोई भी धर्म, आर्य समाजी हों, सन्यासी हो, उन सबकी मां कौन है, ब्रह्मा बाबा, राइट। तो ब्रह्मा माना बेहद की मां है ना, बेहद माना सत्य, जो जन्म मरण से परे है, जो अपरिवर्तनशील है। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, बेहद की बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि हद की बुद्धि, मनुष्य ब्राह्मण में क्या फर्क है, मनुष्य की हद की बुद्धि है, हद माना देवान, हद है बेहद है, देवान हद है, दे अभिमान हद है, पैदा हुआ शरीर 5वें महीने में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो कहते हैं बच्चे की मूवमेंट शुरू हुई, और फिर जब बड़ा होने पर या उसी उम्र में या कभी भी 1 साल का, 2 साल का, 10 साल, 50 साल, 100 साल का होने के बाद आत्मा शरीर से निकल जाती, क्या कहते हैं, देहांत हो गया, देह का अंत हो गया ना। तो देह का अंत होता है, जन्म होता है और अंत होता है, राइट। तो इसलिए देहभान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देहभान, देहभान का नहीं, देह अभिमान के संबंध संपर्क, देहभान और देहभिमान क्या रखा है, देहभान माना मैं देह हूं, और देहभिमान माना, देहभिमान का क्या अर्थ है, देह अभिमान माना मेल फीमेल का भान, पहला भान है देह अभिमान माना मेल रोल, मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे बॉडी कॉन्शियस देहभान को, और इसको कहेंगे रोल कॉन्शियस, मैं मेल हूं मैं फीमेल हूं, ये जो भान है ना सबसे पहला भान है जिसके द्वारा विकारों का जन्म होता है। पांचों सबसे बड़ा विकार कौन सा है, देह अभिमान, इसी से पांचों विकारों का जन्म होता है। जब मेल फीमेल का भान आता है पहला द्वापर युग के शुरू में, उससे काम विकार का जन्म होता है। और देह अभिमान, मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, मैं राजा हूं, मेरे पास ज्यादा पावर है ना, मैं बहुत समझदार, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने इतने इसके शास्त्रों को पढ़ लिया है ना। तो ये जो है अहंकार से क्रोध आता है, मतलब ये जो आता है ना भान, देह अभिमान, क्रोध आता है, मेरे पास मैं बड़ा हूं तो मेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ज्यादा चीजें, लोभ आता है, कम लोभ आ गया है ना। और जो मेरे साथ है उनके प्रति मोह आता है, उनके लिए मैं सब कुछ करूं, उनको सबसे बेस्ट मिलना चाहिए है ना, और फिर इन सब चीजों का अहंकार। तो पांचों विकारों का जन्म किससे होता है, रोल कॉन्शियसनेस से, मैं मेल फीमेल का भान, मैं बड़ा मैं छोटा, मैं माता मैं पिता, मैं पति मैं पत्नी, अमीर गरीब, जो भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं समाज में, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन, जो भी नाम, जो भी कहो, ज्वेलर है, या जो भी आपका प्रोफेशन है, रोल कॉन्शियसनेस है ना। तो इससे फिर देह भान, देह अभिमान और देह के संबंध संपर्क का भान, ये भी देह अभिमान के संबंध संपर्क का भान, देह अभिमान की वजह से संबंध संपर्क होते हैं, और देह अभिमान के पदार्थों का भान, जो भी आपकी प्रॉपर्टी, मकान, कार, बैंक बैलेंस जो भी है, वो देह अभिमान का ही पदार्थ है, और देह अभिमान के स्वभाव संस्कार, देह अभिमान का स्वभाव क्या है, पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह अभिमान का संस्कार क्या है, देह अभिमान, मेरा देह अभिमान है, मैं बहुत काम करता हूं, ये भी तो देह अभिमान है ना, तो क्या हो गया, आलस्य, पहला संस्कार क्या है, आलस्य, देह अभिमान आया, आलस्य आया, और दूसरा अलबेलापन, ब्राह्मणों का नंबर वन दुश्मन कौन सा है, आलस्य और अलबेलापन, फिर दोष दर्शन, तीसरा है दोष दर्शन, चौथा है बदला लेने की भावना, पांचवा है शक, छठा है अनुमान, सातवां है चिंता, आठवां है भय, और नौवां है टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, जल्दबाजी, हर चीज में जल्दबाजी, कंपटीशन कंपैरिजन, और दसवां है ईर्ष्या द्वेष। तो दस मुख्य देव संस्कार है। चलिए दो मिनट बाबा को, ओम शांति। तो बात कर रहे थे हद और बेहद की है ना। तो मनुष्य जो है, मनुष्य का मतलब क्या है, मन के वश में है ना, और मन किसके वश में है, मन जो है हद माना देहभान, देहाभिमान, देह के संबंध, देहभान के, देहाभिमान के संबंध संपर्क का भान, देहाभिमान के पदार्थों का भान, और देहाभिमान के स्वभाव। जैसे पानी की नेचर क्या होती है, ठंडक, आग की नेचर क्या होती है, गर्मी है ना। तो ऐसे ही जो देह अभिमान की नेचर क्या है, इनसिक्योरिटी है ना, असुरक्षा की भावना, उससे पांच विकार, उससे पांच, ये जो पांच विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये देह अभिमान का स्वभाव है। देह अभिमान आते ही पांचों विकार आ जाते इकट्ठे, और देह अभिमान आते ही इनके दस संस्कार हमारे अंदर पैदा होते हैं, आलस्य अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, बदलने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष। तो ये जो है, ये मनुष्य जो है, मनुष्यों की बुद्धि भी, मन भी और संस्कार, तीनों में क्या भरा रहता है, देहभान, देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क का भान, और देहाभिमान के पदार्थों का भान, और देहाभिमान के स्वभाव संस्कार का, वही भरा रहता है 24 घंटे, उसी के विचार चलते हैं, उसी के बारे में बुद्धि काम करती है, उसी की आदत पड़ जाती है। और ब्राह्मण क्या फर्क है, ब्राह्मण की बुद्धि क्या है, ब्राह्मण में क्या है, ब्राह्मण की बुद्धि भेद की हो जाती है। भेद माना एबीसीडी, जिसमें सत्य की समझ हो, जिसमें सत्य की समझ आ जाती है उसे कहते हैं भेद की बुद्धि। भेद माना असत्य, सत्य और हद माना असत्य। हद माना जन्म मरण के बंधन में है, चेंज होता रहता है, और बेहद जन्म मरण से परे है, और जो अपरिवर्तनशील है। आत्मा क्या है, हद है बेहद है, आत्मा क्या है, हद बेहद बेहद। परमात्मा क्या है, हद है बेहद है। आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, बेहद। और ड्रामा क्या है, हद है बेहद। उसमें कर्म फिलोसॉफी क्या है, कर्म कैसा है, कर्म हद है बेहद है, कर्म भी बेहद है। कर्म का विनाश हो सकता है कभी, कर्म का कभी विनाश नहीं होता। वे कहते हैं, बाबा कहते हैं विकर्मों का विनाश होता है, पाप कर्मों का विनाश होता है, पाप कर्म का विनाश होता है, किंतु कर्म का विनाश नहीं होता है। अब इसमें हम क्लियर करेंगे, है ना, कैसे। किंतु ये जो है ब्राह्मण और मनुष्य में क्या फर्क है, मनुष्यों की बुद्धि में, मन में, संस्कारों में तो यही भरा हुआ, देवान देवीमान जो मैंने शेयर किया अभी, और ब्राह्मणों की बुद्धि में, मन में नहीं, ब्राह्मणों की बुद्धि में क्या भरा हुआ है, एबीसीडी। आत्मा बाबा, आत्मा बाबा का संबंध, आत्मा परमात्मा का संबंध, और ड्रामा। सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% अभी तक उसने पार्ट बजाया है, बजा रही है, और भविष्य में बजाती रहेगी। किसके अनुसार, कर्मों के हिसाब के अनुसार नहीं, हिसाब किताब के अनुसार। अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया है, बजा रही है, और बजाती रहेगी भविष्य में भी। और परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर है, डायरेक्टर है, और प्रिंसिपल एक्टर है, और सुप्रीम जस्टिस धर्मराज भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक उसने 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, दे रहा है, और भविष्य में भी देता रहेगा, राइट। तो अभी तक जो कुछ हुआ हमारा, ठीक हुआ गलत हुआ है, है जी, ठीक ही होगा। पर हम क्या समझते हैं कि हम भाई आम मनुष्य क्या समझता है, ठीक है गलत है। हमारे अंदर क्या होता है, अभी तक बचपन से लेकर अभी तक जो भी कुछ हमारे साथ गलत हुआ है, गलत है माना पास्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स, किसी ने हमें धोखा दिया, तकलीफ दी, हमारी इंसल्ट की, गाली दी, दुख दिया, हमारी सबकॉन्शियस में भर जाता है, चित्त में भर जाता है, और उसी रंग से हम दुनिया को देखते हैं। किसने मुझे धोखा दिया, मतलब किसी ने धोखा दिया, मैं 15 साल का 16 साल का था तभी, और अब मैं जिससे भी मिलता हूं उसी रंग में उसी धोखे वाली बात को याद करके मिलूंगा, नहीं कि कहीं ये भी धोखा नहीं दिया, नहीं होता, नहीं होता। दुख दिया, परेशानी हुई, अच्छी बात भूल जाती है, बुरी बात चिपक जाती है ना, नहीं। और उसी बात को हम सारा टाइम याद करते हैं। सपनों में कौन सी बात आती है, सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, सपने उसी से आते हैं, वही पुरानी बातें, बचपन की बातें, है ना, वही गलत बातें जो हमारे साथ किसी कभी हुई या हमने गलत की, वही बुद्धि में उभर के बाद में आती रहती है, साथ में सपनों में भी आती है, दिन में भी आती है, और उसी रंग से हम रंगे रहते हैं। तो 90% विचार जो कहां से आते हैं, हमारे पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आते हैं, और भविष्य की इनसिक्योरिटी से आते हैं, और वर्तमान से सिर्फ 10% ही विचार आते हैं। इसलिए हम अशांति महसूस करते हैं, विचारों का ट्रैफिक बहुत फास्ट हो जाता है, 30 विचार 40 विचार एक मिनट में हो जाते हैं। और शांति अशांति में क्या फर्क है, शांति में क्या, ये 90% जो विचार आए ना पास से, 90% ना, 30 विचार आए तो पास से कितने आए, पास भविष्य से 27 विचार आए, वो कहां से आए, पास से या भूतकाल से या भविष्य से आए, और 3 विचार वर्तमान से आए। तो राजयोग मेडिटेशन से क्या होता है, पास के विचार आने रुक जाते हैं, पास तो भविष्य के विचार आने रुक जाते हैं, और वर्तमान के विचार सिर्फ आते हैं, इसको शांति कहते हैं। तो 30 विचार क्या हो गए, शांति, और 3 विचार क्या हो गए, शांति, ठीक है। इसमें थॉट ट्रैफिक बहुत फास्ट है, अशांति में, और इसमें थॉट ट्रैफिक स्लो है। और तीन विचार भी कौन से आ रहे हैं? एबीसी वाले। या चार विचार कौन से आ रहे? एबीसीडी। बस मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मा है, एक परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे सर्व संबंध उनके साथ हैं, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अब मैं आत्मा परमात्मा की गोद में बैठ के बाबा मुझे राजयोग सिखा रहा है, रस्ता रचना के आदि बंधन के ज्ञान समझा रहा है, और हम भविष्य में क्या बनेंगे? अभी ब्राह्मण है, फरिश्ता सो देवता बन के और बीज रूप बन के बाप के साथ वापिस घर जाएंगे और वहां से सुखधाम में आएंगे। तो भविष्य का विचार नहीं, वर्तमान पास्ट में जो हुआ अच्छा हुआ, और वर्तमान में तो मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, सर्व संबंधों से बाबा हमेशा मेरे साथ है, हर समय साथ है, हर जगह साथ है, और हर कार्य में साथ है। नहीं, कितने विचार चले? तीन या चार? नहीं, ज्यादा चलेगा? इसको कहते शांति। तो इसी सत्य की समझ में, सत्य की समझ जो ज्ञान मिला है उसमें, उसमें विचरण करना, उसमें रमण करना क्या है? शांति। अब विकर्म क्या हुआ? पापकर्म क्या हुआ? पापकर्म क्या हुआ? जैसे मैंने बताया, कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का हिसाब किताब का, कर्मों का हिसाब नहीं, गीता है हिसाब, और किताब क्या है? महाभारत है। भागवत क्या है? किताब। इतनी मोटी होती है? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी और इतनी मोटी ना? नहीं, तो भागवत है किताब और गीता है हिसाब। तो हमारा, अगर मान लीजिए 100 साल पहले मैंने किसी से 10 रुपए उधार लिया, किसी दोस्त से, 100 साल के बाद वो दोस्त क्या करेगा मेरा? मैं उसको वापस नहीं किया तो 100 साल के बाद वो भाई क्या करेगा? वो आत्मा मेरे घर में मेरा बच्चा बन के आएगा, या तो मेरा दोस्त बन के आएगा, बिजनेस पार्टनर बन के आएगा, या पत्नी बन के आएगा, पति बन के आएगा, कुछ ना कुछ तो बन के आएगा। और मुझे 10 रुपए वापस करना पड़े, नहीं करना पड़े उसको 10 रुपए वापस कर, साथ में ब्याज भी वापस देना, किताब भी देना पड़ेगा, किताब माना ब्याज। ब्याज कितना हुआ 10 रुपए का? 100 साल का ब्याज कितना हुआ बताओ? 100 साल का ब्याज हो गया, मैंने एक बार हिसाब लगाया था, 4,18,35,040 रुपये हो गया। ये है पाप कर्मों का खाता, राइट? 10 रुपए देना पड़ेगा, किंतु कितना देना, कितना हो गया हिसाब किताब, कितना हो गया? 4,18,35,040 रुपये हो गया, 100 साल का ब्याज। आपने किसी को 100 साल पहले 2 गाली दी थी, कितनी गाली खानी पड़ेगी इस जन्म में बोलो? किसी के 2 बार इंसल्ट की थी पिछले जन्म में, 100 साल में, पिछले जन्म में 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, नहीं ऐसे गीत गाते हैं ना हम लोग? तो वो आत्मा छोड़ेगी क्या पीछे? नहीं, 2 गाली का हिसाब किताब लेने आएगी, नहीं आएगी, चाहे मेरा बॉस बन के आएगी, चाहे कुछ ना कुछ तो बन के आएगी, नहीं हिसाब किताब तो लेने आएगी, सास बन के आएगी, ननद बन के आएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, नहीं है ना, कुछ ना कुछ बन के आएगी ना, तो वो कितनी गाली देगी? आप सोच लो कितनी गाली देगी ना। और अगर आप राजयोग का सही अभ्यास करते हो बाबा के श्रीमत पर विधिपूर्वक, ब्राह्मण जीवन माना ही विधिपूर्वक जीवन, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे धारणा हो, चाहे सेवा हो, विधिपूर्वक जीवन। तो बाबा, अगर हम सही विधि से बाबा को याद करते हैं, ज्ञान का सही तरह से मनन चिंतन मंथन से करते हैं, और योग को सही विधि से हम प्रैक्टिस करते हैं, धारणाओं में पक्के रहते हैं विधिपूर्वक, और सही विधि से बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा करते हैं, तो क्या होगा? हमारे विक्रम विनाश होंगे। क्या 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 विनाश होगा? ब्याज खत्म होता है। कितना माफ हो जाता है? 4,18,35,040 रुपये माफ। जो 20,000 गाली थी वो माफ हो गई। कितनी खानी पड़ेगी? 2 तो खानी पड़ेंगी, ठीक है, 10 रुपये तो वापस देना ही पड़ेगा। जो कर्म किया ना मूलधन, वो तो देना ही पड़ता है, और सबको देना पड़ता है। इसको बोलते सूली से कांटा, इसको बोलते विक्रम विनाश, इसको कहते पाप कर्म भस्म हो गया। कर्म भस्म हुआ क्या? कर्म भस्म नहीं हुआ। क्या हुआ? योग से क्या भस्म होता है? ब्याज माफ होता है, ब्याज भस्म होता है, कर्म रहता है। अगर कर्म भस्म हो जाए तो अगले कल्प में वो कर्म करेंगे नहीं वापस, है ना? ब्याज भस्म होता है। ये बात क्लियर होगी ना सभी को, राइट? इसलिए अभी का किया हुआ अच्छा या बुरा, इसलिए बाबा कहता आज की मुरली में भी था, अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, किसी को दुख मत दो, कितना मिलेगा, वापस कितना मिलेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा। अभी एक का पदम गुणा है, क्योंकि अभी आखिरी समय आ गया ना, अभी एक का पदम गुणा मिलता भी है, अच्छा कर्म श्रेष्ठ कर्म को तो एक का पदम गुणा मिलता है, और अगर हमने गलत किया तो एक का पदम गुणा दुख भी मिलेगा, है ना। ये आखिरी समय की गति है, इस समय की गति है, ये ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म गति है, है ना। तो ये हमको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हम बाबा के श्रीमत पे चलें हर कदम, इसलिए बताया ना ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो। तो पहले पहले जो हमारी धारणा क्या है, पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता माना ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी है जी, निकल ही नहीं पाएगी। हाँ बिल्कुल, तभी तो वो द्वापर, सीधी द्वापर में उतरती है ना, द्वापर या कलयुग में उतरती है। बिना ब्राह्मण बने कोई आत्मा की जीवन मुक्ति हो ही नहीं सकती है ना। ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा अगर सत्युग त्रेता में आना है तो, नहीं तो आ ही नहीं सकते ना, देवता बन ही नहीं सकते। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो शिव बाबा, तो अभी हमको ये बड़ा क्लियर, ये हमें दिव्य बुद्धि, ये हमें पहले रूहानी दृष्टि मिली है, पहले हम पहले पहले गिफ्ट हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलते ही कि सबको, अपने को भी आत्मा देखो, दूसरों को भी आत्मा देखो, चाहे आपका घर में कोई आपके माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बॉस हो, चाहे आया हो घर में काम करने वाला, आया बाया हो काम करने वाली, नौकर चाकर हो, कोई भी भाई बहन, कुछ भी हो, चाहे सफाई करने वाला आपके घर में, गली में सफाई करने वाला, कैसा भी कोई हो, सबको आत्मा देखो, स्वयं को आत्मा, अपने स्वमान में टिके सबको आत्मा, सबको, सबके प्रति रूहानी दृष्टि। क्योंकि इस दुनिया से मुक्ति पाने का उपाय क्या है, इस देहभान से मुक्ति पाने, देहभिमान से मुक्ति पाने का उपाय क्या है, देह के संबंध संपर्क से मुक्ति पाने का उपाय क्या है, देह के पदार्थों के भान से मुक्ति पाने का उपाय क्या है, देहभान के देह अभिमान के स्वभाव संस्कार से मुक्ति पाने का उपाय क्या है, रूहानी दृष्टि, सबको आत्मा देखो, तो सब संबंधों से मुक्त, सब पदार्थों से मुक्त, स्वभाव संस्कार से मुक्त। सबसे पहले ये प्रैक्टिस दिन रात चलते फिरते उठते जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू से की 1928 से की, कब से की, 1928 से बाबा ने प्रैक्टिस की, रोज दरबार लगाया बाबा ने, क्योंकि बाबा नेपाल के दरबार में जाते थे, उदयपुर के दरबार में, जोधपुर के दरबार में, बड़ौदा के दरबार में बाबा का बहुत आना जाना था, काशी में भी बाबा जाते थे, तो बाबा देखते थे कैसे राजा अपने मंत्रियों से बात करता है, कैसे सेनापति से बात करता है, कैसे हिसाब किताब लेता है, तो बाबा ने भी रोज अडॉप्ट कर लिया। हमारी निर्मल शांतादारी बताती थी कैसे बाबा ने कहां से शुरू किया, है ना, ये चीज देखकर कहां से शुरू की, राजदरबार में कैसे बात, क्योंकि बाबा को अलाउड था राजदरबार में जाना, बाबा को जहां जब भी बाबा नेपाल में जाते या जोधपुर में आते, बाबा उनको, वो राजा वहां का उनको कहता था, राजदरबार में बैठने की जगह देता था, जहां मंत्री बैठते थे बाबा वहीं बैठते थे, बल्कि दीवान के पास वाली सीट पे बैठते थे, तो बाबा देखते थे कैसे राजा अपने दरबार चलाता है, तो बाबा ने वहीं से सीखा ये दरबार चलाना, रोज दरबार लगाई सोने के पहले, अपने मन बुद्धि संस्कार से, फिर मन के कर्मचारी से पूछना, मन से पूछना तुम्हारे कर्मचारी ठीक काम कर रहे हैं, मन के कर्मचारी कौन है, पांचों कर्मेंद्रियां है ना, शरीर के आठों अंग, ये मन के कर्मचारी हैं, बुद्धि के कर्मचारी ठीक हैं, और संस्कारों के कर्मचारी सब ठीक हैं, है ना। तो बाबा ऐसे बात करते थे, है ना। तो ये जो है हमको रोज की रोज करने की आवश्यकता है। तो पहली धारणा क्या हुई, पवित्रता। पहली पवित्रता का मतलब, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है, पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन है, नहीं पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। माया क्या काटती है बताओ, अगर हमको विक्रम करते हैं माया क्या काट लेती है, मुरली में आता है रोज आता है, माया नाक भी काट लेती है, कान भी काट लेती है ना। नाक काटने का मतलब क्या है, नाक काट ली तो श्वास नहीं आएगा ना, तो मतलब पवित्रता खत्म कर देती है माया। सबसे पहले क्या करती है, रूहानी दृष्टि खत्म कर देती है ना। और फिर कान भी काट लेती, कान माना आपको मुरली सुन रहे हैं पर अंदर जाएगी नहीं, समझ नहीं आएगी, कान तो वैसे तो है किंतु फिजिकली तो है किंतु अंदर कान में मुरली जाएगी नहीं, इसलिए माया नाक और कान काट लेती है। यानी और कुछ काटने को बताया क्या, नहीं, नाक और कान काटने को बताया ना। तो नाक माना, हमारा नाक माना, अभी हम श्वास पवित्रता रूपी श्वास आना बंद हो जाता है, रूहानी दृष्टि खत्म हो जाती है और मुरली अंदर जानी, जो मुरली जो है ना, जो पवित्रता की खुराक है ना, पवित्रता खुराक कहां से जाती है, अंदर दिमाग में कहां से जाती है, वो यहां से जाती है। तो ध्यान रखना है कि हमने कोई भी गलत काम किया पवित्रता के खिलाफ, तो पवित्रता की चार चीजें हमें देखनी है पहले अंदर, चार चीजें, कौन कौन सी चार चीजें, पहली पवित्रता, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरे के भी सत्य स्वरूप को देखना, और जो ब्राह्मणों की पवित्रता है, हमारे अंदर भी किसी के प्रति देह की दृष्टि नहीं है, किंतु हमारे अंदर अभी भी लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव है, ये सूक्ष्म अपवित्रता हमारे अंदर अभी भी है। तो किसी भी देहधारी के प्रति लगाव रखना, किसी भी देहधारी के प्रति, ये अपवित्रता है। किसी के प्रति झुकाव रखना, उसकी बात को सुनना, उसकी तरफ अटेंशन देना, ये भी अपवित्रता है। किसी के प्रभाव में आ जाना, रिगार्ड सबको दो, अपने घर में बड़ों को, सेंटर पे बड़ों को, सबको रिगार्ड दो, छोटों को प्यार दो, बड़ों को रिगार्ड दो, किंतु किसी के भी प्रभाव में आना, सिर्फ एक बाबा के प्रभाव में के अलावा किसी और देहधारी के प्रभाव में आना, यह भी अपवित्रता है। चौथी टकराव, इस दुनिया में किसी भी आत्मा से टकराव रखना, यह भी अपवित्रता है। दूसरी बात, किसी भी बात में क्या क्यों कैसे करना, यह भी अपवित्रता है, इससे वैध संकल्पों की उत्पत्ति होती है। तीसरी बात, किसी भी विकार का अंश होना, यह भी अपवित्रता है। कई कहते हैं हम तो ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मचारी तो रहते हैं, ब्रह्मचारी भी रहते हैं चलो, पर अगर आपने क्रोध किया तो पवित्र है, लोभ किया पवित्र है, और किसी से मोह रखा पवित्र है, और अहंकार किया तो भी पवित्र है, ठीक है। और फिर चौथी जो बात, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, ये चार तरह की पवित्रता हमें आवश्यक है, ठीक है। तो तब ये पहली बात, जितनी पवित्रता की डिग्री अच्छी होती जाएगी उतना अधिक अमृत वाला पावरफुल होता जाएगा, नहीं तो पावरफुल नहीं होगा अमृत। कितना भी कोशिश करो, किसी भी देहधारी से लगाव है, झुकाव, प्रभाव, टकराव है, और क्या क्यों कैसे करते हो, अरे परमात्मा के डायरेक्शन में हर काम हो रहा है, उस पर मैं क्वेश्चन करने वाला कौन हूं क्वेश्चन करने वाला। क्वेश्चन करना मतलब परमात्मा की डायरेक्शन पे आपको शक है, राइट। तो ध्यान रखना इस बात का, पवित्रता की परिभाषा। और किसी भी इवन आवेश आया ना अंदर, आपने बाहर गुस्सा नहीं किया, अंदर अंदर आवेश आया, आसक्ति आई, कुछ खा लूं, ये देख लूं, ये कपड़ा पहन लूं, ये कपड़ा मेरे पास भी होना चाहिए, पवित्रता की डिग्री वहां भी तेरा पावरफुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो पावरफुल सब, और ब्राह्मणों की सबसे पहले निशानी क्या है, पावरफुल अमृत वेला, क्योंकि सिर्फ अमृत वेला में ही विक्रम विनाश हो सकते हैं, बाकी टाइम में विक्रम विनाश नहीं होते हैं। हाँ, हम अटेंशन रख के हम ऐसा कर सकते हैं कि हम विक्रम हमसे ना हो दोपहर में सारे दिन में, किंतु विक्रम विनाश करने का टाइम सिर्फ अमृत वेला है। शुरुआत जब दिन में सुबह सब क्यों, इसके पीछे राज क्या है, अमृत वेला ही क्यों है। जब हम सुबह सुबह जब उठते हैं, हम डेल्टा स्लीप से उठते हैं, जब 3:30 बजे जब उठते हैं, 3:30 पे उठते हैं, तो उसमें डेल्टा स्लीप होती है। डेल्टा स्लीप माना हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 या 3, 1 से 3 को, 1 से 3 की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको डेल्टा स्लीप कहते हैं, ब्रिंक रिदम को डेल्टा रिदम कहते हैं। तो हम यूशी डेल्टा रिदम से उठते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ब्रेन की कितनी होती है, 1 से 3 विचार पर मिनट समझो, और शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। शिव बाबा को विचारे नहीं चलता, वो तो रहता ही परम धाम में, संकल्पों से परे की दुनिया, इनकॉर्पोरेट वर्ल्ड है, निराकारी दुनिया। और ब्रह्मा बाबा को एक ही संकल्प है कि मेरे बच्चे तैयार हो तो चलेंगे वापस घर। कितने साल से बैठा है ब्रह्मा बाबा, 53 साल से बैठा ऊपर, नहीं कितने साल से, 53 साल से ऊपर हो गया ब्रह्मा बाबा को बैठे ऊपर, तो उसको एक ही संकल्प चल रहा है कि बस क्या, कि बच्चे तैयार हो तो चले, है ना। दूसरा संकल्प ब्रह्मा बाबा को है ही नहीं। और हमारे कितने संकल्प चलते हैं दिन में, 30 लगभग, 25-30 संकल्प चलते हैं। जल्दीबाजी करते तो 20 संकल्प, चिंता करते तो 25 संकल्प, और थोड़ा चिड़चिड़ापन आया तो 30 संकल्प, गुस्सा आया तो 35, जोर से आया तो 40। तो कितने हो गए, थोड़ा तो जल्दीबाजी करते हो ना, सभी नहीं करते जल्दीबाजी, थोड़ी तो चिंता करते हो ना, थोड़ा तो चिड़चिड़ करते हैं ना सभी, नहीं माथा तो गर्म हो ही जाता ना कोई बात देख के, तो 30 हो गए नहीं हो गए, तो दिन में 25-30 चलते हैं, 20-25-30, और शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी जीरो। सुबह सुबह जब उठते हैं हम तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, चलो 3 लगा लो, 2 भी हो सकती है। और जैसे ही उठे गुड मॉर्निंग किया बाबा को, बाबा बाप दादा गुड मॉर्निंग, और एकदम से बाबा को बिंदी समझ के, बिंदी बाप से अशरीरी बन के, देव और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के बिंदी बन के, और परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गए, 3 से सिर्फ 2 हो गए, 2 3 माना अतिंद्रिय सुख, 2 माना आनंद, बाप दादा की गोद में पहुंच गए, और 1 माना, 1 माना क्या, सर्वशक्तिमान, 8 शक्तियों की, 8 शक्तियों की अनुभूति होनी शुरू हो गई, और 1 से कम हुआ उसमें समा गए, लवलीन हो गए, तो परमधाम में पहुंच गए, विक्रम विनाश होने शुरू हो गए। 1 से कम होते ही विक्रम विनाश होने शुरू हो जाते हैं, डिलीट होने शुरू हो जाते हैं, डिलीट माना मेमोरीज, जो स्मृतियां मर्ज होने लगती हैं, 5,000 साल के लिए मर्ज हो जाती है, सुना, 5,000 साल के लिए मर्ज हो जाती है। तो ये है सुबह सुबह विक्रम विनाश की। तो 1 से कम संकल्प कब आएगा बताओ, 30 जब दिन में 25-30 चल रहे हैं, 20 चल रहे, तब करोगे क्या, तब नहीं हो पाएगा, तब मुश्किल से 3-4 तक पहुंचोगे, ज्यादा ही कोशिश करेंगे 2-3 तक पहुंचेंगे। हाँ, जब हमारे मैक्सिमम विनाश होने जाएंगे ना, जब सारे मैक्सिमम 300 जन्मों में से मान लीजिए हमने 40 के विनाश कर लिए, शुरू शुरू के रह जाएंगे, 42 के विनाश कर लिए, 21 के रह गए, तब ऐसी स्थिति आ जाएगी, जब रजो स्थिति आ जाएगी ना, तो हम दिन में भी विक्रम विनाश कर सकेंगे, राइट, दिन में भी विक्रम विनाश कर लेंगे, शाम को भी कर लेंगे, रात को भी कर लेंगे, किंतु अभी अभी जैसे हमारी स्थिति है उसके अनुसार अभी अमृत वेला ही पावरफुल समय है। थोड़ा समय के बाद जब हमारे, मान लीजिए हमने 60 जन्म के विक्रम विनाश कर लिए, तो 2-3 जन्म के रह गए, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो फिर हम सारा दिन जब चाहे विक्रम विनाश ही होते रहेंगे हमेशा ही, और लास्ट में जब 63 जन्म के विक्रम विनाश होंगे तो हमारा 24 घंटा ही योग लगा रहेगा। हम 5 मिनट बाबा को ऐसे कर लेंगे तो हमारी 4-6 घंटे की नींद, 6 मिनट ऐसे हो जाएंगे परम धाम में चले जाएंगे, 6 घंटे की नींद हो जाएगी, हम 24 घंटा काम कर सकेंगे, 24 घंटा सेवा कर सकेंगे, है ना, वो अंत का समय योग निद्रा का समय होगा, है ना, राइट। अभी हमारा क्या है, अभी तो हमको बहुत अभ्यास करना है, निरंतरता लानी पड़ेगी, कैसी लानी पड़ेगी, निरंतरता लानी पड़ेगी, वो तब होगा जब ये रूहानी दृष्टि पक्की कर देंगे। तो मैंने बताया पहले पवित्रता की बात होगी ना पूरी, दूसरा कई लोग, कई भाई बहन कहते हमारा योग नहीं लगता है, शुद्ध सात्विक भोजन, है ना, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, और सात्विक माना 7 गुणों को बढ़ाने वाला, फल सब्जी सलाद अंकुरित दलिया, है ना, दही दूध रोटी सब्जी, है ना, ये चावल, है ना, ये जो खाना है ना, और बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, पराठा पकौड़ा समोसा खाना रासिक भोजन, आलस पैदा करेगा, बाबा को याद करने में नींद आएगी, गैस बनेगी, पेट में भारीपन लगेगा, खाना पचेगा नहीं, ये खाना पचाना बहुत मुश्किल होता है, तला हुआ भोजन करना, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। रासिक भोजन करने वाला कभी पावरफुल योगी नहीं बन सकता है, कभी कभी ऑकेशनली खा लिया वो अलग बात है, क्योंकि वो भी क्यों खाने का, रासिक भोजन क्यों खाने का, तामसिक भोजन कौन सा, अचार खाना, गरम मसाले खाना, मिर्चें खाना, लाल मिर्चें खाना, है ना, और क्या, चाय कॉफी पीना, ज्यादा पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सब क्या है, लहसुन प्याज खाना, ये तामसिक भोजन है, सुना, तो ये भोजन नहीं, तो शुद्ध सात्विक भोजन, अगर रासिक और तामसिक भोजन खाओगे तो काम नहीं बनेगा, और फिर सत्संग, सत्यसंग माना एक बाबा, दो ही चीज सत्य हैं, बाबा और मुरली, एक बाबा और मुरली का संग, मोबाइल का संग, व्हाट्सएप का संग, टीवी का संग, इंटरनेट का संग, यूट्यूब का संग, गड़बड़ है ना। तो पवित्रता शुद्ध सात्विक भोजन सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुण माना एक भी आपने एक बार गुस्सा किया 3 दिन तक आपका योग लगेगा नहीं, 3 दिन तक योग लगेगा नहीं, मुरली अंदर जाएगी नहीं, एक बार जल्दीबाजी की ना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर आया, 18 घंटा योग लगेगा नहीं, चिंता की 18 घंटा योग लगेगा नहीं,
उदास हो गए, 5 दिन योग लगेगा नहीं। किसी के प्रति बदला लेने की भावना रखी, जब तक उसको माफ नहीं करोगे तब तक योग लगेगा नहीं। समझ गए? तो जो अवगुणों को टच भी नहीं करना। कई बार कहते हैं मेरा योग नहीं लग रहा आज, मुरली अंदर जा नहीं रही। क्यों नहीं लग रहा? जरूर पिछले 24 घंटे में कहीं ना कहीं हमने गलती की है, किसी मर्यादा का सूक्ष्म अवज्ञा की है। बाबा से हर कदम पे पूछा नहीं है, बाबा से अपना बोल बोलने से पहले चेक नहीं किया है, कर्म करने खाने से पहले चेक नहीं किया है, देखने से पहले चेक नहीं किया है, सुनने से पहले चेक नहीं किया है, राइट? तो बहुत बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 4 धारणाएं हमारी हैं, पवित्र मर्यादाएं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुणों को धारण करो, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, अंतर्मुखता, भेद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, है ना, एकांतवासी, एकाग्रता, एकनामी, वैर्स इकनॉमी, एकमत, एकरस, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, दया, रहम, करुणा, क्षमा भाव, कमुरली में था ना आज की क्षमा भाव, है ना। तो ऐसे अपने अंदर से धारण करो, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, समान के सबको सम्मान देना, है ना, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्माण भाव, एक निर्माण होता है निरहंकारी, एक होता है निर्माण कंस्ट्रक्टिव, और एक निर्मल स्वभाव, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमान बरदारी, ये 36 दैवी गुण है, ये धारण करने, ठीक है। तो जितना ये धारणा, जितनी धारणा बढ़ती जाएगी उतना अधिक अमृत वाला पावरफुल होता जाएगा, उतना मुरली अंदर रिकॉर्ड होती जाएगी, उतना सारा दिन अटेंशन रहेगा, बाबा की बातें याद आएंगी, दुनिया की बातें याद नहीं आएंगी, दुनिया वाले क्या कहते हैं हमें याद नहीं आएगा, उसने क्या कहा, टीवी में क्या आया, उसने क्या खबर की, उसने क्या, मोदी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, राहुल गांधी ने, हमें ये याद नहीं आएगा, हमें बाबा ने क्या कहा मुरली में वो याद आएगा, राइट? और फिर सोने के मेरे वेंटिलेशन, हमारे पास टाइम होगा सच्चा सच्चा पोता मिल देने का बाबा, कि बाबा ये हमने आज सुबह, आपने तो कहा था ये काम करने को, आपने कहा था वारिस बनना है तो क्या करो, किसी को दुख मत दो, एक एक बाप को फॉलो करो, श्रीमत पे चलो, कि तू बाबा आज तो मेरे से गलती हो गई, आपने कहा था मुझे वारिस तो बनना है, कि तो मैंने थोड़ी गलती कर दी, खाने में गलती करी, देखने में गलती की, सुनने में गलती की, बोलने में गलती की, है ना। तो ऐसे बाबा से लेटर लिखो, चलिए इशारा करें, नहीं करते रहो ना। तो दिव्य, तो ये जब तक हमारे 4 धारणाएं और 4 नियम, मतलब मैं हमेशा बोलता हूं 4 परहेज करो तो 4 गोली काम करती है ना, तब अमृत वेला सक्सेसफुल होता है, तब मुरली रूपी गोली अच्छा अंदर काम करती है, तब अटेंशन, माना सारा दिन बाबा ने क्या कहा उसका अटेंशन रहता है, वो होमवर्क है हमारा, और सोने के पहले वेंटिलेशन, माना हम पोता मिल जाते हैं बाबा को, बाबा चिट्ठी लिखते हैं बाबा को, बाबा आज आपने कहा था ना मेरे को सुबह मुरली में, मैंने आज ये किया, इतना परसेंट किया, बाबा आपने ये कहा था मैंने ऐसे किया, बाबा मैंने आपने वरदान दिया था मैंने ऐसे किया, अब बाबा आपका आज स्लोगन ये था मैंने गलत की, इसमें से कुछ गलत किया, क्या क्या गलतियां भी बाबा को बताते हैं, और क्या क्या ठीक किया वो भी बाबा को बताते हैं, और फिर घंटे घंटे याद का चार्ट रखते हैं, हर घंटे में कितने मिनट याद रही, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक का चार्ट रखते हैं, उसको भरते हैं, फिर एक मुरली पढ़ते हैं सोने के पहले, चाहे वो साकार मुरली, बाबा के उस दिन की मुरली, या अगले दिन की मुरली, या कोई अव्यक्त मुरली, इससे मन प्लेन हो जाता है, मन प्लेन हो जाता है, फिर बाबा की गोद में सो जाते हैं, ये अपना बेड है ना, जो जिस बेड पे सोते हैं वो गैरेज है, उस पर शरीर को पार किया, सूक्ष्म वतन है मेरा बेडरूम, और बाबा की गोद है मेरा घर, मेरा बेड, तो वहां जाके बाबा की गोद में सो जाते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है, क्वालिटी नींद आती है, और बाबा कहते हैं बाबा इतने भी जगा देना, बाबा क्यूरेट उतने भी जगा देता है। तो ये 4 नियम और 4 मर्यादाएं ये पक्की करो, तो फिर बाबा क्या करता है, दिव्य हमारी बुद्धि, दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट लिफ्ट का काम करती है, जब दिव्य बुद्धि मिली ना बाबा से, वो लिफ्ट बन जाती है, वो लिफ्ट 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ, जो मन को मैंने लाइट बनाया ना, मन को मैंने हल्का बनाया, टीम को पॉजिटिव बनाया, टीम को विचारों को भावनाओं को वृत्ति को स्मृति को बाबा की मुरली के अनुसार बनाया, तो सूक्ष्म शरीर बन गया और वो ये संस्कार बन गए, ड्रेस बन गई सूक्ष्म शरीर की। तो फिर जो है हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाते और फिर ये डिब्बे बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट का काम करते हैं। और फिर जब बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं तो हम बच्चे बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं। बाबा की गोद में बैठ के माँ के रूप में बाबा माँ तो है ही, शिव बाबा ब्रह्मा माँ के अंदर में आया हुआ है, बाप दादा तो उसमें बाप दादा की गोद में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा बाप दादा की गोद में पहुंच गई। फिर बाप के संबंध का अनुभव करते हैं। फिर टीचर बाप के रूप में बाबा क्या देता है, त्रिनेत्री बना देता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, माना अब हम उससे समझ सकते हैं मैं कौन हूं, बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, उसका सूक्ष्म शरीर कैसा है, मेरा कैसा है, मैं आत्मा कैसी हूं, कितनी पवित्र बनी हूं, मेरा मन कितना सूक्ष्म कितना पवित्र बना है, मेरी बुद्धि कैसी बनी है, मेरा संस्कार कैसे बने हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं बाबा के साथ। फिर टीचर के रूप में बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना देता है अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। फिर बाबा की गोद में हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं गोद में बैठ के, है ना, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, इमेजिन नहीं करते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं, मध्य पूज्य स्वरूप, संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, ये बाबा की गोद में हम महसूस करते हैं। फिर बाप के रूप में बाबा क्या करता है, सूक्ष्म वतन में जाने का हक, परमधाम में जाने का हक किसको है, जब 63 जन्म के पापकर्म भस्म हो जाए, पर मेरे तो अभी भस्म नहीं हुए, किंतु बाबा फिर भी हमको मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता है, किसका, सूक्ष्म वतन में तो पहुंच ही गए, परमधाम में जाने का वीजा दे देता है कि हम परमधाम में उस अवस्था को महसूस कर सकते हैं, बीज रूप अवस्था को महसूस कर सकते हैं, बीज रूप बाप के साथ हम इवन वहां से सुखधाम में भी जा सकते हैं। तो बाबा हमको वरदान, गति सदगति का वरदान दे देता है। अभी 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म नहीं के, तो भी बाबा हमको वहां से वरदान दे, जाओ बच्चे परमधाम देख आओ, जाओ बच्चे सुखधाम देख के आओ, जाओ अपना महल देख के आ जाओ, ये बाबा हमको फ्री दे देता है ना, और जब चाहे हम जा सकते हैं, ये वरदान हमको मिल गया। तो बाप के रूप में वर्षा, टीचर की वर्षा किस चीज का, सत्य की समझ का, टीचर के रूप में किसका, क्या त्रिकालदर्शी बना दिया, स्वदर्शन चक्र दे दिया हाथ में, घुमाओ घुमाते रहो घुमाते रहो, ये पढ़ाई का प्रसर प्राप्ति स्वरूप का वर्षा मिल गया, हमें प्राप्ति हो गई, और सतगुरु के रूप में वरदान मिल गया, किसका, गति सदगति का। और फिर बड़े भाई के रूप में बाबा क्या करता है, अब बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा बात कर रहा है, बड़े भाई के रूप में बंधु माना बड़ा भाई, बाबा कहता बच्चे अपने लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी सब मेरे को दे दो, सारा बोझ मेरे को दे दो, हल्के हो जाओ, बिल्कुल हल्के हो जाओ एकदम, बस बाबा ये तन ये मन ये धन ये संबंध सब तुम्हारे समर्पण, बाबा की गोद में बैठ के बात करो बाबा से, बाबा आपसे तुम्हारे, बाबा कहता बच्चे बस इसको मेरी अमानत समझ के यूज करना, इसको अपना मत समझना, मेरी अमानत समझ के, ये तन तुम्हारा नहीं, अब ये बाबा की अमानत समझ के इसको यूज करो, इसका ध्यान भी रखो, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना, हर चीज का ध्यान रखो, कैसे इसको यूज करना है, किस समय सोना है, किस समय सैर करना है, किस समय नींद करनी है, हर चीज का ध्यान रखो, क्योंकि अब बाबा का है और बहुत अमूल्य है, क्योंकि बाबा की गिफ्ट है, अब ये तन किसकी गिफ्ट है, बाबा की, पर बाबा से पूछ के यूज करना, ये मन बाबा की गिफ्ट है, बाबा की गिफ्ट समझ के यूज करना, धन सबसे बड़ा धन कौन सा है, समय, मेरा एक एक सेकेंड एक एक वर्ष के बराबर है, तो बाबा की श्रीमत पे इसको यूज करना, श्वास बाबा की श्रीमत पे यूज करना, और स्थूल धन भी बाबा की श्रीमत पे यूज करना, अपनी मर्जी से मत यूज करो, 10 रुपए भी खर्च करना है तो बाबा से पूछो, बाबा कैसे करूं, बच्चे ने मांगे, हाँ बाबा कभी मना नहीं करेगा, आज भी बाबा ने कहा 5 रुपया किसमें रखो, 5 रुपया बाबा को दो, 10 रुपया बैंक में रखो, है ना, बाबा ने यह नहीं कहा 10 रुपया बैंक में, 10 रुपया मुझे दो, 5 रुपया बैंक में रखो, नहीं, तो 5 रुपया मुझे दो, है ना, तो बाबा बहुत ध्यान रखता है। मुझे पता दावड़ी दादी ध्यान रखती थी, बड़ी दादी पूछती थी गुप्ता जी क्या करते हो, कैसे आपका खर्चा चलता है। मैं दादी को कहता दादी ऐसे से मैं बैंक में नहीं रखता था। नहीं दादी कहती नहीं, एक एक हिस्सा बैंक में, एक हिस्सा बाबा के घर में, एक हिस्सा घर के लिए, एक हिस्सा बैंक में और एक हिस्सा घर चलाने के लिए। तो दादी मतलब इतना एक बात का ध्यान रखती थी पूरा बकायदा गाइडलाइन, हर चीज की गाइडलाइन दादी देती थी। तो ऐसा पक्का अपने जीवन बनाओ है ना, क्योंकि अभी अभी हम इन्वेस्ट करें जितना हो सके बाबा के घर में इन्वेस्ट करें, बाबा के यज्ञ में भंडारी में इन्वेस्ट करें। तो बाबा की भंडारी में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, मुझे याद है जब हमारे घर में जब गीता पाठशाला शुरू हुई 68 में, तो हमारे घर में तो माता पिता इतने स्ट्रिक्ट थे कि घर में आलू भी आएंगे ना गेहूं भी आएगा ना, तो गेहूं भी पहले बाबा के घर में जाएगा, आलू भी बाबा के घर में जाएंगे, सब्जी भी आएगी ना पहले यूज नहीं करेंगे। जब तक सब्जी का थोड़ा हिस्सा, चाहे वो पालक आया, चाहे वो कुछ भी भिंडी आई, चाहे वो कुछ भी हरी मिर्च आया, कुछ भी आया, बाबा के घर में जरूर जाएगा। सैलरी आएगी, सैलरी का हिस्सा पहले बाबा के घर में जाएगा, फिर उसके बाद हम यूज करना शुरू करेंगे। कोई भी चीज घर में आई, कुछ भी आया, बाबा के घर में जरूर जाएगा, नहीं तो यूज नहीं करेंगे। बाबा की अमानत समझ के यूज करते थे, उस समय धारणाएं बहुत स्ट्रांग थी हमारे। जब मैं छोटा 9 साल का था तभी, तब तो बहुत स्ट्रिक्ट नियम थे है ना, अभी तो सब कुछ ढीला ढाला हो गया है ना, बड़ी स्ट्रांग मर्यादाएं थी, नियम थे है ना। तो वो नियम अभी भी हमको धारण करने चाहिए। तो अगर हम ये चार नियम और चार मर्यादाओं पर चलते हैं तो हमारी दिव्य बुद्धि क्या बन जाती है, लिफ्ट बन जाती है, एक सेकंड में सूक्ष्मतन में बाबा दादा की गोद में पहुंचा देती है, परमधाम में पहुंचाती है, सुखधाम में पहुंचा देती है। और हमें क्या कराती है, सूक्ष्मतन में बता ना, ये संबंध वो झूले हैं, माता पिता की गोद हो गई, गोदी का झूला हो गया, फिर उसके बाद बाप टीचर का हो गया, सुदर्शन चक्र भी झूला है, और फिर सूक्ष्म वतन, फिर वो उसके बाद गति सदगति, और उसके बाद सारा बोझ बाबा को दे दो, हल्के डबल लाइट हो जाओ, और फिर दोस्त के रूप में बाबा को वो बातें बता दो जो किसी को नहीं बताते हो। जाने अनजाने हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम चाहते नहीं तो भी गलतियां हो जाती हैं और बार बार खाने को आती हैं। जब योग करने बैठो बाबा से माफी मांगते रहते हैं, बाबा मुझसे गलती हो गई थी, माफ करना नहीं। जब दोस्त के रूप में बाबा से, बाबा गोद में बैठे हो, बाबा को बताओ बाबा मुझसे गलती हो गई, नहीं बच्चे तुमने कहा था ना, बच्चे मैंने समझ लिया ना, बस बार बार नहीं कहो है ना। अच्छा चलो ठीक, कहना है तो कहो, कोई बात नहीं, पर तुम इसको बुद्धि से भूल जाओ। जो भी सूक्ष्म भी गलती हो बाबा को बताओ दोस्त के रूप में, तो दोस्त को हम बता सकते हैं। फिर साजन के रूप में, बाबा साजन के रूप में क्या करता है, हमको सजाता है, कितने गुणों से, 36 गुणों से सजा देता है। साजन का काम क्या होता, सजाना है ना। तो बाबा से देखो बाबा कैसे हमारे में सत्यता को सजा रहा है, सत्यता की परिभाषा सही अपने अंदर महसूस करो है ना। सत्यता क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, क्या है पवित्रता का संपूर्ण रूप, क्या है पवित्रता का है ना, निर्भयता का संपूर्ण रूप क्या है, सभ्यता का संपूर्ण रूप क्या है, अंतर्मुखता का संपूर्ण रूप क्या है। बाबा ने सब अव्यक्त मूल्य में समझाया हुआ है, परिभाषाएं दी हुई हैं। भेद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है, अनासक्त वृत्ति क्या होती है, उपराम वृत्ति, एकांतवासी क्या है, समय नहीं है तो मैं इस पे ले जाता आपको। ये एक एक दैवी गुण भी झूला है ना, 9 संबंध भी झूले हैं है ना, 9 संबंध, 2 संबंध तो गोदी है, माँ बाप की गोदी होती, टीचर की गोदी नहीं होती, टीचर ने जो पढ़ाया सदस्य चक्र ये झूला है, अत्यंत सुख ये गुरु वाला भी, सतगुरु वाला वरदान भी झूला है, बंधु वाला भी झूला है, हल्के हो गए ना, सखा वाला भी झूला है, और साजन वाला भी 36 गुणों का झूला है, 36 गुणों का झूला, एक एक झूले में झूलो है ना, ये अत्यंत सुख है, ये आनंद है ना, ये भी तो ना, तो ये झूले हैं, झूले झूलों में झूलो, तो 56 प्रकार के झूले हैं। कितने प्रकार के, बाबा की गोद में बैठे बैठे कितने झूले झूलते रहो, सूक्ष्म वतन में जब पेट भर जाए ना तो झूले झूल झूल के, फिर क्या करो, फिर बाबा कहे अच्छा बच्चा चलो थोड़ी देर परमधाम जाके आ जाओ, फिर बापे अशरीर बन के परमधाम घर में चले जाओ, फिर आप थोड़ा वहां तो बिंदी अशरीर बन के जाएंगे ना, तो वहां से करंट आनी शुरू हो जाती, बैटरी चार्ज होने शुरू हो जाती, विक्रम विनाश होने शुरू हो गए। ऐसा परिवर्तन शरीर में होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, एंडोर्फिन निकलते हैं, एनकेफेलिन सेरोटोनिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, डोपामिन निकलता है। आपके बीमारी का दर्द, शरीर में जो बीमारी है ना वो दर्द गायब हो जाता है, हार्ट का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, महसूस ही नहीं होगा आपको, सूली कांटा बन जाती है। जैसे मेरे को हार्ट की बीमारी थी, मेरे को हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई थी, मेरे को मेरे यूएस के फ्रेंड ने कहा था, मैं खुद हार्ट स्पेशलिस्ट था और अभी भी वही कार्य करता हूं, कि तो उसने कहा था तुम 2 साल से जिंदा नहीं रहोगे ज्यादा, 97 में कहा था, अभी कितना साल हो गया, जिंदा होगे नहीं जिंदा हो, क्योंकि मेरी 3 महीने बीमारी खत्म हो गई, हार्ट की दीवारें उनको नॉर्मल हो गई। तो वो मेरे को जो सूली थी कांटा बन गई, कांटा भी फूल बन गया, उसके बाद हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हुआ और कितने लोगों का फायदा हुआ नहीं। तो ये अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। तो बाबा हमको क्या कराता है, कैसे हमको साजन के रूप में दैवी गुण सजा करके प्रैक्टिकल व्यवहार बदलता है। हमें खाली थ्योरी नहीं करना है कि मैं विजुलाइज करता रहूं, परिवर्तन तो कुछ हुआ ही नहीं। कल भी गुस्सा आता था, आज भी गुस्सा आता है, कल भी चिंता होती थी, आज भी चिंता होती है, कल भी डर लगता था, आज भी डर लगता है, नहीं। प्रैक्टिकल व्यवहार, निर्भयता वाला, मधुरता वाला, धैर्यता वाला, प्रैक्टिकल हो ना, प्रैक्टिकल व्यवहार बदलता है। और बाबा की गोद में बैठ के हम लेते हैं ना, बाबा सजाता है ना प्रैक्टिकल में, और देखो कितना परिवर्तन होता है ना। सज्जन के रूम में फिर बाबा वीकनेस, कमी कमजोरी निकाल देता है। फिर बच्चे के रूम में बाबा क्या करता है, जब 8 संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं तो फिर बाबा हमारा बच्चा बन जाता है। जब तक 8 संबंध के अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनेंगे तब तक बाबा हमारा बच्चा नहीं बन सकता। तब बच्चा सुखदायी बच्चा बनता है। जो चाहो बाबा आपकी सेवा करता है, बाबा आपके साथ हर तरह के, बाबा का अपना तन मन धन चीज तब स्वीकार करता है बाबा हमारा, उससे पहले हमारा स्वीकार नहीं करता। तन मन धन और संबंध, तब बाबा को हम समर्पण कर सकते हैं, उसको अपना वारिस बना लेते हैं। मैंपन मेरेपन का भी वारिस कर, उसको त्याग कर देते हैं, और तब हमारी निराकारी अवस्था शुरू होती है। निराकारी अवस्था बनके, निराकारी बनके निराकारी बाप से कंबाइंड रहते हैं, त्याग करने के बाद, किसका, मैंपन मेरेपन का त्याग करने के बाद फिर हमारी ज्वालामुखी तपस्या शुरू हो जाती है। तो हमारे 61 जन्मों के पापक्रम भस्म, 62-63 जन्मों के पाप, इस जन्म के और पिछले जन्म के पापक्रम बस कैसे भस्म होते हैं, जब हम अशरीर बनके अशरीर बाप के पास परमधाम में, हमारे इस जन्म का देह अभिमान खत्म हो जाता है पिछले जन्मों का, और जो पाप याद है वो खत्म हो जाते हैं। किंतु 61 जन्मों के पाप का पाप तो हमको याद ही नहीं है। 61 जन्मों के पापक्रम, फिर ऐसे जब तक मैंपन मेरेपन का त्याग नहीं करते तब जाकर के हमारी निराकारी अवस्था बनती है, फिर निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं, ज्वालामुखी योग तपस्या चालू होती है, अग्नि बन जाती है, और फिर हमारे विक्रम विनाश होते हैं इस जन्म के और पिछले 61 जन्मों के पापक्रम से। और फिर हमारी कैसी अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था बनती है। संपूर्ण निर्विकारी अवस्था बनती है तो उससे फिर क्या होता है, फिर हमारी बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा शुरू होती है। किंतु और फिर हमारे अंदर निरहंकार क्या बनते हैं, हम निरहंकारी बन जाते हैं, और तब हम जाके हम संपूर्ण क्या बनते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनते हैं। तो ये अभी समय है, ये आखिरी समय है, अब हम खूब तपस्या करके बाबा की ये 4 नियम 4 मर्यादाओं को फॉलो करके, है ना, अपने को बाबा की मुरली जो है ना, बाबा की जो मुरली है उसका सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरण करके, बाबा जो है ना, बाबा ने जो हमें बताया है, एक एक संबंध का सुख लें, अनुभव की अथॉरिटी बने, और एक एक सेकंड को हम बचाएं, क्योंकि संगम के समय को वरदान है, एक का पदम गुणा। जैसे समय समाप्त होने वाला है, समय समाप्त होगा तो फिर बाबा एक का पदम गुणा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, फिर तो बाबा धर्मराज बन जाएगा। धर्मराज बनने के बाद क्या होगा, फिर तो कुछ सुनेगा हमारी, फिर तो जो जहां तक पहुंच गए वहीं तक रह के उसका रिजल्ट निकलाएगा, फिर तो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो अभी ध्यान रखें कि हमसे कोई भी गलती ना हो। नियम मर्यादाओं पे जितना परफेक्शन आएगी, नियम और मर्यादाओं पे अमृत वेला पावरफुल, मुरली पावरफुल, मुरली में तो जेब में रहती है हमेशा, इसलिए सारा दिन मुरली, मेरे को हमको तो कुछ काम ही नहीं है, बस हम तो मुरली बाबा को सारा दिन पढ़ते हैं, सारा दिन बाबा की मुरली का मनन चिंतन, मनन माना मन मन में रिवाइज करते हैं, चिंतन माना बाबा मुझे ऐसा बनना ही है ना, और मंथन माना बुद्धि भी साथ में मिल जाती है, मन के अंदर मनन और चिंतन होता है और बुद्धि साथ मिल जाती है मंथन, फिर पुरानी पुरानी बातें, बाबा की पुरानी कही हुई बातें उनको गहराई से मिला करके, और बाबा को बीच में बुद्धि योग बाबा से लगा करके, बाबा इसका मतलब बताओ ना, बाबा इसका मतलब बताओ ना, बाबा मैं इसको कैसे अप्लाई करूं अपने लाइफ में, तो बाबा मक्खन निकाल के दे देता है, और मक्खन को सिमरन सिमरन माना, फिर सिमर उस मक्खन को कार्य में लगाओ, कार्य करते समय जो भी कार्य करते हो, घर में करते हो, ऑफिस में करते हो, हॉस्पिटल में करते हो, जहां भी जो भी आपका वहां कार्य में लगा, तो क्या होगा, आपके जो कर्म भोग हैं, शरीर के कर्म भोग, परिस्थितियां हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब 25 रहती है, अभी धीरे धीरे 20 रहने लगेगी, फिर 15 रहने लगेगी, धीरे 10 रहने लगेगी, 8 बना शांति। जब 8 ही विचार एक मिनट चला करेंगे तो शांति आ जाएगी, 6 हो जाएंगे तो फिर आपके आसपास जो भी व्यक्ति है ना, जो भी व्यक्ति है, चाहे भाई बहन है, कुछ भी है, उनको आप स्वीकार करना सीख जाओगे, उनके कर्मों के साथ, उनके व्यवहार के साथ स्वीकार करना, इसको प्यार कहते हैं। और जब 4 हो जाएगी तो खुशी हो जाएगी, ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत, जो होने वाला सबसे अच्छा। पर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, 1 से 3 माना सूक्ष्म वतन में बाप-दादा की गोद में पहुंच जाओगे, 3 माना अतिंद्रिय सुख, 2 माना आनंद, और 1 माना परमधाम, परमधाम में पहुंच जाओगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो यही प्रैक्टिस 32 हमारी अभी तक कैसे रहती, 32, 33, 34, फिर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। हम ब्राह्मणों की क्या क्या गति होनी चाहिए, हम ब्राह्मण गति क्या होनी चाहिए, मनुष्य गति क्या होती है, 32, 33, 34 है ना, या 33, 34, 35, और हमारी क्या रहती है, हमारी होनी चाहिए 1, 2, 3, या तो अतिंद्रिय सुख, ये अब हमारा अधिकार है, आनंद ये हमारा अधिकार है, और फिर सर्वशक्तिमान की स्थिति, अतिंद्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तिमान। हम ब्राह्मणों का 3 मुख्य नियम है, 3 मुख्य सुख है, 3 मुख्य प्राप्तियां इस समय की, कौन कौन सी, अतिंद्रिय सुख, आनंद और क्या, सर्वशक्तिमान। तो इन तीनों स्थिति में रहें, यही हमारे जीवन का सुख है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं हैं, कौन कौन सी, पहले बाप के साथ सदा साथ रहने वाले, माना योगी तू आत्मा है, कभी किसी संबंध से, कभी किसी संबंध से, कभी किसी संबंध से बाप के साथ ही रहो। और दूसरा है ज्ञानी तू आत्मा है, जो बाबा के साथी बन के, सहयोगी बन के विश्व की सेवा करते हैं, अर्थात ज्ञान का, ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं, ज्ञान के द्वारा सेवा करते हैं, वो ज्ञानी तू आत्मा है। और फिर साथ चलने वाले, योगी तू और ज्ञानी तू आत्मा को कंबाइन करके हम बाप समान कर्मातीत बनते हैं, तो बाप के साथ वापस कर जाते हैं। तो हर ब्राह्मण की 3 विशेषताएं होनी चाहिए, सदा साथ रहने की प्रैक्टिस, अर्थात सदा योगी तू आत्मा, बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों के साथ, सूक्ष्म वतन में कभी परमधाम में साथ रहो। दूसरा ज्ञानी तू आत्माएं, जो भी दुनिया में आत्माएं हैं उनकी सबकी मनसा सेवा करो, अभी वाचा करने का समय खत्म हो गया लगभग, मनसा सेवा करो 24 घंटा, जब उठते बैठते खाते पीते बाबा से कंबाइंड रहो, कभी सूक्ष्म वतन कभी परमधाम। तो बाबा ने जो हमें ABCD सिखाया है वो अनुभूति हम सबको कराएं। और तीसरा अपने विक्रम विनाश करके बाप समान कर्मातीत बन के बाबा के साथ जाने की तैयारी करें। तो ये 3 अवस्थाएं हमारी हर आत्मा में डेवलप होनी चाहिए, तो ऐसा हम पक्का अभ्यास करें। अगर हमारी ये गति फिर हमारी क्या होगी, हम के सब, सबके सब बाबा के साथ साथी बन के सूक्ष्म वतन, वाया सूक्ष्म वतन परमधाम में जाएंगे, और फिर बाबा के साथ, बाबा माना ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म में आएंगे। और रॉयल फैमिली में आएंगे, कैसे आएंगे, रॉयल फैमिली में वो आएगा जो इस समय सदा बाबा के दिल तक नशीन बन के रहेगा, वो रॉयल फैमिली में आएगा। अगर इस समय हम दिल तक नशीन, माना हम बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार नहीं बनेंगे, तो हम बाबा के दिल तक नशीन नहीं बन पाएंगे। इसलिए अभी आज्ञाकारी माना सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव, वफादार माना मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ईमानदार माना रोज शाम को सोने के पहले बाबा को एक एक बात अंदर बाहर सेम हर बात बाबा को बता दो, बाबा मेरे से आज गलती हो गई, बाबा आज आपने कहा था मैंने करके दिखाया, आज मेरे को इतना लालच आया इतनी फिर भी मैंने करके दिखाया, है ना, हर बात बाबा को बताओ, घंटे घंटे याद का चार्ट भरो, मुरली पढ़ के बाबा की गोद में सो जाओ। तो ईमानदार इसे कहते हैं, सच्चा ईमानदार, अंदर बाहर सेम, और फिर वफादार माना और फरमान बरदार। तो जो बाबा के फरमान, जैसे आज का वरदान था, आज का स्लोगन था, मीठे बच्चे था, जो भी मतलब मुख्य 4-5 फरमान बाबा के होते हैं मुरली में, उन फरमान को पूरा फॉलो, फिर ऐसे बच्चे कैचिंग पावर, टचिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बाबा अंत में टच करेगा और हम एक साथ एक सेकंड के इशारे से बाबा के साथ चले जाएंगे। ओम शांति।